होटल का नाम बड़ा नहीं था, लेकिन जगह साफ सुथरी और सुकून देने वाली थी। शहर के उस हिस्से में जहां शोर थोड़ा कम हो जाता है, वहीं ये छोटा सा होटल था। कांच के दरवाजे, भीतर हल्की पीली रोशनी और खाने की खुशबू जो पेट से ज्यादा दिल को छूती थी। रम्या खिड़की वाली टेबल पर बैठी थी। स्कूल यूनिफॉर्म अब बदल चुकी थी, हल्का सा सलवार कमीज, लेकिन चेहरे पर अभी भी वही थकान और भावनाओं की उलझन। उसके सामने बैठे थे उसके पिता सुधीर सिंह। सादा कपड़े, आंखों में थकान के बावजूद एक अजीब सा सुकून, जैसे बेटी को सामने देखकर दिल को थोड़ी राहत मिल गई हो। वेटर ऑर्डर लेकर जा चुका था। तुम्हें वही पसंद है ना, कढ़ी चावल? सुधीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रम्या ने सिर हिलाया। हाँ, मम्मी के बाद वही सबसे अच्छा लगता है। वाक्य पूरा होते होते उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। चुप्पी भारी नहीं थी, बस भरी हुई थी उन बातों से जो अब तक कहीं नहीं गई थीं। खिड़की के बाहर सड़क पर लोग चल रहे थे, कोई हंसता हुआ, कोई जल्दी में, कोई मोबाइल पर बात करता हुआ। जिंदगी अपने ढंग से चल रही थी, बस इस टेबल पर बैठी एक बेटी और एक पिता के लिए समय कुछ देर को थम गया था। रम्या ने आखिरकार बोलना शुरू किया। पापा, उसने सामने रखे पानी के गिलास को उंगलियों से घुमाते हुए कहा, क्या कभी ऐसा होगा कि हम सब फिर एक साथ रह पाएं? सुधीर ने नज़र उठाकर उसे देखा, उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर के साथ। मैं रोज यही सोचती हूँ, रम्या की आवाज़ भर्राने लगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, दादी के साथ, इस घर के साथ। उसने गहरी सांस ली। माँ कभी नहीं मानेंगी पापा, ये कहते हुए उसके होंठ कांप गए। उन्हें लगता है कि आपने हमें छोड़ दिया था, कि आपने हमें दुख दिया। सुधीर ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए आंखें बंद कर लीं। बस एक पल के लिए, जैसे पुरानी यादें एक साथ लौट आई हों। बेटा, उसने धीमे स्वर में कहा, कुछ फैसले गलत थे, कुछ हालात ऐसे थे जिनमें सही गलत का फर्क धुंधला हो गया था। रम्या ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे सब समझ नहीं आता पापा, लेकिन इतना पता है, मैं हर दिन तरसती हूँ आपके लिए। विशाल भी, उसने भाई का नाम लेते ही आंखें पोंछ लीं। माँ के सामने हम कुछ कह नहीं पाते, उन्हें लगता है हम उनके खिलाफ हो जाएंगे। उसी वक्त वेटर खाना लेकर आ गया, कढ़ी चावल, साथ में सलाद और अचार। सुधीर ने प्लेट रम्या की तरफ सरकाई। पहले खा लो, खाली पेट बातें और भारी लगती हैं। रम्या ने हल्की मुस्कान के साथ पहला निवाला लिया। स्वाद वही था, घर जैसा। पापा, उसने खाते खाते कहा, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि हमसे मिलने के लिए भी आपको छुपना पड़ता है? सुधीर ने चम्मच नीचे रखा। आता है, उसने सच्चाई से कहा, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं बनता। मैं तुम्हारी माँ से लड़कर तुम्हें नहीं जीत सकता। उसने मेज़ पर रखे नैपकिन से हाथ पोंछे। तुम्हारी माँ आज भी मुझसे नाराज़ है, मेरी पुरानी बातों के लिए, मेरी चुप्पी के लिए, मेरी गलतियों के लिए। रम्या ने आंखें उठाकर देखा। तो फिर हम क्या करें? सुधीर थोड़ा आगे झुका। आवाज़ में सख्ती नहीं थी, बस समझ। तुम उन्हें मनाओ बेटा, उसने कहा, और अपने भाई को भी साथ रखो। मैं? रम्या चौंकी। लेकिन वो मेरी बात सुनेंगी ही नहीं। सुनेंगी, सुधीर ने यकीन से कहा, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। तुम्हारी आवाज़ में सवाल नहीं, दर्द है, और माँ अपने बच्चों के दर्द को नज़रअंदाज नहीं कर पाती। रम्या ने चम्मच प्लेट में रख दिया। लेकिन अगर वो हमें रोक लें, अगर कह दें कि पापा से मिलना बंद करो? सुधीर ने एक पल सोचा। तो भी सच बोलना मत छोड़ना, उसने कहा। कहना कि तुम किसी को छोड़ नहीं रही, बस सबको जोड़ना चाहती हो। रम्या की आंखें भर आईं। मैं चाहती हूँ, उसने धीमे से कहा, कि सुबह उठूँ तो आप सामने हों, कि विशाल भैया कॉलेज जाए तो आप डांटें, कि दादी मुझे बालों में तेल लगाएं। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं थक गई हूँ पापा, दो जिंदगियों के बीच फंसकर। सुधीर ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। भीड़ भरे होटल में भी वो पल निजी था। मैं यहाँ हूँ, उसने कहा, और कहीं नहीं जा रहा। कुछ देर दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। रम्या ने प्लेट लगभग खाली कर दी। और विशाल? उसने अचानक पूछा। वो ज़िद्दी है, माँ के सामने बोल नहीं पाता। सुधीर मुस्कुराया। तुम उसकी छोटी बहन हो, उसे हिम्मत तुम ही दोगी। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और काउंटर की तरफ इशारा किया। लड़ाई लंबी होगी बेटा, उसने उठते हुए कहा, लेकिन हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। रम्या भी खड़ी हो गई। डर लगता है, उसने स्वीकार किया। सुधीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। वही अपनापन, वही भरोसा। डर होना गलत नहीं, उसने कहा, डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही सही है। होटल से बाहर निकलते वक्त शाम की रोशनी सड़क पर फैल चुकी थी। रम्या ने आसमान की तरफ देखा। दिल में अभी भी सवाल थे, लेकिन पहली बार उन्हें जवाब ढूंढने की ताकत भी महसूस हो रही थी। वो जानती थी, माँ को मनाना आसान नहीं होगा, घर लौटना सीधा रास्ता नहीं होगा, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके पिता थे, और उसके भीतर एक बेटी का हक। होटल से निकलते ही सुधीर ने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को इशारे से रोका। शाम अब गहराने लगी थी, आसमान पर हल्की सी नीली परत और स्ट्रीट लाइट्स एक एक कर जलने लगी थीं। रम्या चुपचाप ऑटो में बैठ गई, सुधीर उसके बगल में नहीं बैठा, आगे ड्राइवर के पास, जैसे हर चीज़ में आज भी एक अदृश्य दूरी जरूरी थी। ऑटो चल पड़ा। पहियों की गरगराहट के बीच रम्या खिड़की से बाहर देखती रही। वही रास्ते वही मोड़, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। दिल भारी नहीं था, बस भरा हुआ था। कुछ ही मिनटों में सुधीर ने ड्राइवर से कहा, यहीं रोक दीजिए। ऑटो एक सुनसान सी गली के पास रुका, हवेली से थोड़ा पहले। इतनी दूरी की हवेली से कोई देख न सके, इतनी नज़दीक कि रम्या अकेली भी रास्ता तय कर ले। रम्या उतरी, एक पल को खड़ी रही, मानो कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हो। सुधीर भी ऑटो से उतरा। यहीं ठीक है, उसने हल्के से कहा, आगे मैं नहीं जाऊँगा। रम्या ने सिर हिलाया, मैं समझती हूँ पापा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। सड़क लगभग खाली थी, बस दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। ध्यान रखना, सुधीर ने कहा, और अगर कभी बहुत भारी लगे तो फ़ोन कर लेगा। आप भी, रम्या ने जवाब दिया, खुद का ख्याल रखिएगा। सुधीर ने एक पल को उसका माथा छूना चाहा, फिर हाथ वहीं रोक लिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। वो वापस ऑटो में बैठा। ऑटो आगे बढ़ा, धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होती रही। रम्या वहीं खड़ी देखती रही जब तक ऑटो मोड़ से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली, बैग को कंधे पर ठीक किया और हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। जानती थी अंदर सवाल होंगे, नजरें होंगी और चुप्पियां भी, लेकिन आज उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे।